ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता प्रथमोध्याय। कल हमने 12 से 19 तक के श्लोक देखे थे, जिसमें शंख ध्वनि हुई थी दोनों तरफ से। आज आगे अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धातु राष्ट्रेण कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्र संपादे धनुरुद्यम पांडव ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेन योरु भयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। तो इसमें अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग है, जिसमें संजय धृतराष्ट्र से कह रहा है, हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उन शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से यह वचन कहे, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लू, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कर रहे हैं? ऋषिकेश श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे अच्युत, सेनयोरु भयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युतम, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख ना लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। 1191 भारत में जो अंतिम शासक था पृथ्वीराज चौहान, उसकी दो राजधानियां थी, एक दिल्ली और दूसरा अजमेर। भारत पर आक्रमण हुआ था मोहम्मद गजनवी का, उसके बाद यह दूसरा आक्रांता यवन आक्रांता भारत में आया मोहम्मद गोरी। तराइन का युद्ध था, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, जिसमें मोहम्मद गोरी की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी, परंतु वो बच निकला था। उसे मारने का अवसर था, परंतु राजपूतों की शान इसमें थी कि जो शत्रु भाग रहा है उसे मारना नहीं चाहिए, उसे भागने दो, जाने दो, भागते हुए को नहीं मारेंगे। इसके लिए मोहम्मद गोरी बच गया 1191। उसके बाद उसने बहुत जोर से तैयारी की मोहम्मद गोरी ने, और एक दूसरा आक्रमण किया भारत पर, और वो आक्रमण हुआ था 1192 में, एक साल के बाद। पृथ्वीराज चौहान को शायद लगा था, कहीं कहीं तो लिखा है 17 बार उसको हराया, पर बहुत सारे इतिहास के रिकॉर्ड से वो कहते हैं बस दो ही युद्ध हुए थे, ज्यादा नहीं। तो पहली बार तो हराया, या बहुत बार हराया कुछ इतिहासकारों के मतों से। दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, उसको लगा कि ये इतना शक्तिशाली नहीं है, क्योंकि उसकी सेना की तुलना में, मोहम्मद गोरी की सेना की तुलना में, पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी बहुत बड़ी थी, बहुत शक्तिशाली भी थी। शत्रु को वो कमजोर समझ लिया उसने, और ये उसकी बहुत बड़ी भूल थी, शायद ऐसी भूल कि इस भूल के बाद भारत में मुगलों का शासन चालू हो गया। बैटल ऑफ तराइन तराइन का यह युद्ध जो कि मोहम्मद घोरी ने जीता, उसमें और बहुत सारे दूसरे भी तत्व है। जयचंद कन्नौज, उसने भी साथ नहीं दिया परंतु हार हो गई। और पृथ्वीराज चौहान की हार अर्थात एक युग समाप्त हुआ वहां पर। शायद द्वापर की वो समाप्ति होगी वही समय, और कलयुग की शुरुआत सृष्टि चक्र के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि उस युद्ध के बाद सारा भारत सीधा की सीधा मोहम्मद घोरी के हाथ में चला गया। किताबें लिखी गई है, जब पृथ्वीराज चौहान की हार हुई उसको ले गया उधर गजनी। पर हमारी कथा ये भी कहती है कि उसने, पृथ्वीराज चौहान ने और उसके मित्र चांद बरदाई ने मोहम्मद घोरी को मार दिया। मार भले दिया परंतु वो खुद भी तो मर गया, और भारत में हिंदू शासकों का अंत हो गया। अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान, प्रथम शासक सम्राट अशोक, और वहां से मुगलों का शासन चालू हो गया। यहां अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है श्री कृष्ण से? सेन योरु भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युतम। वो कहता है ये समय तो वैसे शस्त्र चलाने का है। ऋषिकेशम तद वाक्य मिदमाह महीपते। वो कहता है कि मेरे रथ को सेना के मध्य में ले चलो। क्यों ले चलो? क्योंकि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। क्या कह रहा है अर्जुन? कि मेरे युद्ध को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, ताकि मैं देख सकूं, जान सकूं, समझ सकूं, निरीक्षण कर सकूं, ऑब्जर्व कर सकूं कि मुझे किस किस के साथ लड़ना है। और जब जब योद्धाओं ने, जब जब आक्रांताओं में, जब जब संसार में जो भी महान आत्माएं हुई है, जो युद्ध के लिए निकली है, जिन्होंने अपने शत्रु को नहीं जाना, नहीं समझा, शत्रु की स्टडी नहीं की, तो उनकी हार वैसे ही होगी जैसे 1192 में पृथ्वीराज चौहान की बैटल ऑफ टराइन 2 में हार होगी, और सारा ही सारा भारत मुगलों के शासन में चला गया, क्योंकि शत्रु को कमजोर समझ लिया, ये समझ लिया कि जिनको मैंने इतनी बार हराया वो मुझे क्या हराएंगे। शत्रु को कमजोर समझ लिया और फिर हार हो गई। गीता के इस श्लोक में 20, 21 और 22, ये तीन श्लोक है। इन तीन श्लोक में अर्जुन कह रहा है, हे ऋषिकेश, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, ताकि मैं ऑब्जर्व कर सकूं, राइट ऑब्जर्वरशिप। जब तक व्यक्ति ऑब्जर्व नहीं करता और डिटैच होकर नहीं देखता, शत्रु का सामना नहीं किया जा सकता है। और जब जब व्यक्ति डिटैच होकर देखता है, वहां पर क्रोध नहीं हो सकता, पक्षपात नहीं हो सकता, बायस नहीं हो सकता है, प्रोजुडिस नहीं हो सकता है। इसलिए वो कहता है मुझे देखने दो, देखना। तो यहां ये बात समझने जैसी है कि जिनके साथ हमें युद्ध करना है या जिनको हमें हराना है, उनको क्या करना है? देखना है, जानना है, समझना है। जगदीश भाई ने कई बार कहा है कि भगवान को जानना, पहचानना, मानना बहुत कठिन है। कोटों में कोई और कोई में कोई कर सकता है, परंतु माया को देखना, जानना, पहचानना उन कोटों में कोई और कोटों में कोई में से भी कोई, या उन कोई में से भी कोई ही कर सकता है, सब नहीं। तो निरीक्षण और साक्षी भाव, ऑब्जर्व और डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, ये दो चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पहले कि हम इस चर्चा में उतरे, यहां एक बात बहुत अच्छी जो कही हुई है, अर्जुन के लिए नाम दिया है कपिध्वज, कपिध्वज, कपिध्वज अर्थात जिसके झंडे पर कपि हो अर्थात हनुमान हो। यहां पर एक दो प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो जिसकी बाबा मुरलियों में चर्चा करते हैं कि महाभारत का युद्ध पूरा हो गया है, सब कुछ समाप्त हो गया है, अर्जुन भी हार चुका है उन भीलों के द्वारा, सारा राज्य अर्जुन का पोता परीक्षित को दे दिया और सारे पांडव कहां चल पड़े, पहाड़ों के ऊपर। बाबा कहते हैं पांडव गल मरे, सबसे पहले नकुल गिरता है, सहदेव गिरता है, उसके बाद में द्रौपदी, उसके बाद में चौथे नंबर पर अर्जुन गिरता है। अर्जुन जब गिरता है तो भीम पूछता है धृतराष्ट्र से कि अर्जुन क्यों गिर गया, अर्जुन क्या स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं है। युधिष्ठिर कहता है कि अर्जुन इसलिए गिरा क्योंकि उसमें अहंकार बहुत था। द्रौपदी इसलिए गिरी कि पांचों पतियों में एक के प्रति ज्यादा प्रेम था। ये दो उत्तर दुर्योधन युधिष्ठिर देता है अर्जुन को। अर्जुन में एक सूक्ष्म अहंकार होता है हमेशा ही कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मैं सबसे महान हूं। एक दूसरा प्रसंग है क्योंकि कपिध्वज कहा है अर्जुन को, कपिध्वज अर्थात जिसके रथ का ध्वज में कपि है अर्थात हनुमान है। महाभारत का युद्ध पूरा हो जाता है, 18 दिन पूरे हो जाते हैं, उसके बाद में दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है, अर्जुन रथ पर है, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम उतरो, अर्जुन रथ से उतरता है, कृष्ण घोड़ों को छोड़ देते हैं और वो खुद भी उतरते हैं, और जैसे ही कृष्ण उतरते हैं वो रथ जलकर भस्म हो जाता है, भयंकर अग्नि प्रकट होती है। तो अर्जुन पूछता है ये क्या है, कृष्ण उससे कहते हैं ये रथ जिस पर तुम सवार थे कब का नष्ट हो चुका था, द्रोण और भीष्म के ब्रह्मास्त्र और बाकी सब अस्त्रों के कारण, ये तो केवल मेरी शक्ति थी जिसके वजह से ये रथ पर तुम थे और रथ जीवंत था, नहीं तो रथ तो कब से नष्ट हो चुका था। इस ज्ञान और योग के जीवन में, इस ब्राह्मण जीवन में कोई अगर ये सोचे मैं ये कर रहा हूं, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, ये सेवाएं मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा ये सेवाएं हो रही है, तो ये स्थिति अर्जुन की सी है। अर्जुन को गिरना पड़ा इसी अहंकार के कारण कि मैं कर रहा हूं, जबकि करने वाला कोई और ही था। जो भयंकर सीन दिखाया हुआ है, वो रथ ऐसे जल रहा है जैसे हजारों ब्रह्मास्त्र उसमें है, कपिध्वज। और एक बात यहां पर है समझ लेने जैसी, कृष्ण पहले अर्जुन उतरता है, जैसे ही अर्जुन उतरता है वो जो ध्वज होता है अर्जुन के रथ में जिसमें हनुमान होता है वो उड़ जाता है। हनुमान प्रतीक वैराग का भी है। जिस रथ में ध्वज वैराग का होगा उसकी कभी हार नहीं हो सकती। एक दूसरा प्रसंग है जहां पर अर्जुन कृष्ण से कहते हैं आप मेरे रथ के ही नहीं, मेरे मनोरथ के भी सारथी हो, मेरे जो इंटेंशंस है, मेरे जो भी जीवन के इंस्पिरेशन है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं उन सब के भी आप सारथी हो, रथ के और मनोरथ के। भगवान को अपने रथ का भी सारथी बनाना और भगवान को अपने डिजायर्स, इच्छाएं, एम्स, गोल्स, मोटिवेशन, इंस्पिरेशंस उसका भी सारथी बनाना, ताकि उनको चलाने वाला भी वो रहे। रथ और मनोरथ दोनों का सारथी भगवान है। तो कपिध्वज का ये अर्थ यहां पर है। अभी अर्जुन कहता है कि मेरे रथ को दो सेनाएं हैं, उसके बीच में खड़ा करो। यहां पर ऑब्जर्वर निरीक्षण करना चाहता है, इसलिए नहीं कि मैं उन्हें कैसे मारूं, ये क्रोध नहीं है, केवल देखना चाहता है, साक्षी होकर देखना चाहता है कि मैं जानू तो सही मुझे किस किस से लड़ना है। ये अभ्यास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप का, साक्षी भाव का। एक ब्राह्मण आत्मा को किन किन चीजों को साक्षी होकर देखना है, किन किन चीजों का डिटैच्ड भाव से निरीक्षण करना है, ऐसी सात बातें हैं। किन किन चीजों का निरीक्षण करना है पहले आप बताओ, फिर हम थोड़ी चर्चा दूसरी करेंगे। डिटैच स्वयं को और संबंधियों को, पार्ट को, परिस्थितियों को, बीमारी को, पुरुषार्थ को, कमी कमजोरियों को, मन के संकल्प को। यहां अर्जुन किसको देखना चाहता है बीच में, जो शत्रु है। हमारे शत्रु कौन है? चाहे दो प्रकार की लड़ाई है हमारी, एक आंतरिक लड़ाई या बाहर की लड़ाई, अंदर के शत्रु हो या बाहर के शत्रु हो, दोनों ही शत्रुओं को जानना बहुत जरूरी है। और जानने के लिए क्या चाहिए? डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप, संपूर्ण साक्षी, ना उनकी विशेषता ना गुण, कुछ नहीं, हम एकदम अलग है और केवल देख रहे हैं दोनों को। तो सात चीजों में सबसे पहला है, किसको हमें साक्षी होकर देखना है? आत्मा के 5000 साल के पार्ट को, एक। दूसरा स्वयं को, स्वयं को में भी इस जीवन को। तीसरा भगवान के पार्ट को। चौथा इस यज्ञ को। पांचवा प्रकृति को। छठवा इस संसार को एज अ ड्रामा। और सातवा समय को। तो इन सात में इस चर्चा को हम करेंगे, व्हाट टू सी एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर। क्योंकि जब तक हम डिटैच्ड ऑब्जर्वर नहीं होते, हमारा जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन है वो गलत होगा। सबसे पहला है आत्मा के 5000 साल के पार्ट को, जो हमें बाबा ने हमेशा कहा है, क्या करो? देखना, जो हम सभी कर रहे हैं। इसकी हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ज्यादा चर्चा हमें सेकंड पॉइंट की करनी है। मैं आत्मा और मैं अपने सारे पार्ट को देख रही हूँ, परमधाम से नीचे उतरी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम, परमधाम से परमधाम तक के पार्ट को, घर से घर तक के पार्ट को, परसों की मुरली। घर को याद करना मुश्किल नहीं है, घर को याद करना मुश्किल नहीं होता है, घर से घर तक की यात्रा, इसको साक्षी होकर देखना। ये सबसे पहला साक्षी भाव है। द फर्स्ट डिटैच्ड ऑब्जर्वर इज टू सी सोल, जर्नी ऑफ सोल्स, जर्नी ऑफ 5000 ईयर्स। ये पहला। दूसरा है स्वयं के वर्तमान जीवन को, ये सबसे महत्व है जिसकी हमें आज चर्चा करनी है। इसमें तीन बातें हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हर तीन बात में और साथ साथ बातें। पास्ट, अतीत को देखना, वर्तमान को देखना और भविष्य को देखना। अब अतीत में 7 things, सबसे पहले सारी घटनाएं, इस जीवन की बात कर रहे हैं, बचपन से, यहां मेरा जन्म हुआ बर्थ प्लेस और यहां मैं हूं अभी, ये जो यात्रा है इसमें आज तक जन्म से लेकर अब तक जितनी घटनाएं हुई है सबको देखना, ऑब्जर्वर। जैसे कि कोई स्क्रीन है यहां पर, मैं उस स्क्रीन में देख रहा हूं, एक स्टेज है उस स्टेज पर देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं? मेरे जीवन में हुई सारी की सारी घटनाओं को, सब घटनाएं, मेरा जन्म कहां हुआ, मेरे घर, ये मेरा घर, माँ बाप, भाई बहन, मित्र संबंधी, स्कूल, सब कुछ साक्षी होकर देख रहे हैं। अज्ञान काल, जीवन में क्या क्या किया, सब कुछ देखना निरपेक्ष भाव से। ये नहीं कि ये मैंने गलती कर दी, मुझे पश्चाताप करना है, ऐसा नहीं। जैसे कल बता रहे थे द कन्फेशंस ऑफ सेंट ऑगस्टीन, वहां पर सेंट ऑगस्टीन ने किताब जो लिखी गई है 400 AD, उसने उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ सब कुछ लिखा। उसमें 13 चैप्टर्स है, फर्स्ट 9 चैप्टर्स उसने डिसाइड किया कि मेरा जन्म कहां हुआ, फिर जहां जन्म हुआ मेरा बचपन कैसा था, सब कुछ लिखा उसने। क्या क्या पाप किए, मॉरल सिंस, मीनियल सिंस, जो जो मैंने पाप किए, अपराध किए भगवान के खिलाफ, वो सब कुछ उसने इतना स्पष्ट लिखा उसमें। सब कुछ लिखा, मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। और फिर मुझे कैसा मैं क्रिश्चियनिटी की तरफ बढ़ा, कैसे मेरे जीवन में वो गुरु आ गया, सब कुछ लिखा। तो वो लिखने के लिए कितना साक्षी भाव चाहिए, इसके लिए हो सके तो अपना ही जीवन लिखना। परसों की मुरली, कुछ कुछ लोग अपने जीवन की हिस्ट्री लिखते हैं, नोट करते हैं। तुम भी नोट करो कि हमने बाप को कितना याद किया, अपनी ही लाइफ स्टोरी लिखना। उसका फायदा क्या है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। यहां जन्म हुआ, यहां मैं बढ़ा, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। तो डिटैच्ड ऑब्जर्वर में स्वयं के जीवन में सबसे पहले पास्ट की सारी घटनाओं को देखना, जन्म से लेकर तो अब तक जो कुछ भी किया। फर्स्ट, सेकंड, उसमें यह भी आ जाएगा कि कैसे हमको भगवान मिला, भगवान मिलने के बाद कौन कौन सी जीवन में घटनाएं हुई, प्री रियलाइजेशन स्टोरी एंड पोस्ट रियलाइजेशन स्टोरी। प्री रियलाइजेशन जीवन क्या था, पोस्ट रियलाइजेशन जीवन क्या था। प्री रियलाइजेशन माया, पोस्ट रियलाइजेशन माया। प्री रियलाइजेशन बैरियर्स एंड ऑब्स्टेकल्स, पोस्ट रियलाइजेशन बैरियर्स ऑब्स्टेकल्स, इम्पीडेंस, क्या क्या हुआ, वो सब कुछ देखना बस। कितना अच्छा अभ्यास है पहला। दूसरा देखना है संकल्पों को, अपने ही संकल्प। ये मैं नहीं हूं, ये है संकल्प और ये मैं हूं। मैं अलग, संकल्प अलग। कौन से, पास्ट के, अभी के नहीं, हम अभी पास्ट की चर्चा कर रहे हैं। पास्ट में मेरे जीवन में बचपन से लेकर अब तक क्या क्या संकल्प रहे, ये लिखना या देखना। पास्ट में मेरे जीवन में क्या क्या संकल्प रहे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। उसमें सबसे पहले बताया पास्ट में हैपनिंग्स, घटनाएं देख रहे। दूसरा है संकल्प कैसे रहे पास्ट के, सारे संकल्प बचपन से लेकर अब तक। बचपन में मैं क्या सोचता था, क्या मुझे चाहिए था, क्या मुझे पाना था, वो सारे संकल्प, संकल्प। तीसरा, बचपन से लेकर तो पास्ट में अब तक मैंने क्या क्या बोला, बोल, मेरे बोल कौन से, वो बोल थे जिनसे जीवन में क्या हो गया, तूफान खड़ा हो गया, द्वंद खड़ा हो गया। एक अंग्रेजी ऑथर लिखता है, आई हैव ऑलवेज रिपेंटेड फॉर व्हाट आई हैव स्पोकन एंड नेवर फॉर व्हाट आई डिड नॉट। जब मुझे लगा कि मैं उसके लिए पश्चाताप कभी नहीं किया, जो विचार तो विकार के आए परंतु मैंने बोले नहीं, क्रोध के विचार है परंतु बोला नहीं, पश्चाताप मैंने हमेशा उस चीज के लिए किया जो मैंने बोल दिया। इसके लिए न बोलना कितना अच्छा है बोलने से। महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है द प्रोपेंसिटी टू एग्जैगरेट और मॉडिफाई द ट्रूथ Or to suppress the truth is a natural, it is a natural tendency of man and silence is necessary to surmount it. हम क्या करते हैं, सत्य के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसको या तो दबा देते हैं, उसका रूप परिवर्तन कर देते हैं, या तो क्या करते हैं, उसको बड़ा चढ़ा कर बताते हैं। ये तीन हम में दोष है, Exaggeration, modification and suppression of truth is the natural propensity of man and silence is necessary to surmount it. हमने आज तक बचपन से लेकर अब तक क्या क्या बोला वो बोल को साक्षी होकर देखना ये दूसरा तीसरा चौथा कर्म क्या क्या किया वो कौन से ऐसे कर्म थे जो पाप कर्म थे नीच कर्म थे शूद्र कर्म थे सिंफुल एक्शंस थी और जिनके वजह से हमें पश्चाताप करना पड़ा उन एक्शंस को साक्षी होकर देखना नेक्स्ट संबंध संपर्क ऑल रिलेशनशिप्स मेरे पास्ट के जीवन में जो भी बचपन से लेकर अब तक जो संबंध है ऐसे वो कौन से संबंध थे जिन्होंने मुझे दुख दिया मुझे पश्चाताप करना पड़ा जिन संबंधों में मैं बहुत अधिक इन्वॉल्व हो गया वो कौन से संबंध थे उनको मुझे साक्षी होकर देखना है सिक्स्थ हिसाब किताब सारे के सारे कार्मिक अकाउंट्स को देखना मेरे जीवन के क्या क्या कार्मिक अकाउंट्स है उसको साक्षी होकर देखना सर्व बीमारियों को साक्षी होकर देखना मेरे जीवन में कौन कौन सी बीमारी आई कैंसर आया फ्रैक्चर आया सर्दी खांसी आई कभी एडमिट होना पड़ा हार्ट प्रॉब्लम आई क्या आया जितने भी सम टोटल ऑफ ऑल द डिसीजेस उन सब डिसीजेस को क्या करना यहां से यहां तक साक्षी होकर के देखना बीमारियों को बीमारियां और सातवां विकार जो यहां बाबा बात कर रहे हैं जो अर्जुन बीच में जाके खड़ा हो गया है किस लिए खड़ा हो गया है देखने के लिए कि मेरे जो शत्रु है वो कितने शक्तिशाली है मेरे जो शत्रु है वो क्या कर रहे हैं मेरे जो शत्रु है वो कैसे है वो जान रहा है विकारों को साक्षी होकर देखना क्रोध को साक्षी होकर देखना क्रोध को कैसे जीतेंगे साक्षी भाव से काम को साक्षी होकर देखना क्रोध काम लोभ ये ऐसे विकार है कि जितना इनसे लड़ाई करो द्वंद्व चालू ही रहता है विधि क्या है देखना काम आया देखो क्या है उसमें और चला गया देखने से ही वो नष्ट हो जाएगा डिटैच्ड ऑब्जर्वर सारे विकार केवल एक नहीं सारे कैसे आए और कैसे गए आए तो किस मार्ग से आए उनमें शक्ति कौन सी है उनकी पॉजिटिव पॉइंट्स कौन सी है स्मार्ट अप्रोच सब कुछ उनके विषय में तो विकारों को तो पास्ट में ये सात चीजों को निरीक्षण करना राइट ऑब्जर्वरशिप डिटैच्ड ऑब्जर्वरशिप देखना सबसे पहला क्या बताया घटनाएं बचपन से लेकर अब तक पास्ट में क्या क्या घटनाएं हुई दूसरा संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क हिसाब किताब और विकार उसी तरह वर्तमान में अभी मुझे साक्षी होकर देखना है सारी घटनाओं को जो हो रही है उन घटनाओं को साक्षी होकर देखना है एक दूसरा संकल्प को अभी मेरे वर्तमान में क्या संकल्प चल रहे तीसरा बोल चौथा कर्म पांचवा संबंध संपर्क छठवा हिसाब किताब अभी जो हिसाब किताब चालू है उनको क्या करना है साक्षी होकर देखना और सातवा क्या अभी कोई विकार है अभी काम अभी क्रोध अभी लोभ अभी मोह अभी अहंकार कितना है कैसा है उसको साक्षी होकर देखना वर्तमान अभी भविष्य भविष्य में सबसे पहले घटनाएं क्या हो सकती है एक दूसरा संकल्प कैसे होने चाहिए तीसरा बोल चौथा कर्म कर्म कैसे होने चाहिए अभी से देख लेना फिर संबंध संपर्क कैसे होने चाहिए क्योंकि पुराने संबंध संपर्क का अनुभव है तुम बुजुर्ग हो तुम अनुभवी हो धोखा नहीं खा सकते माया को हराने वाले ना कि हार खाने वाले अनुभवी अर्थात संपन्न भरपूर एक भी शक्ति की कमी नहीं है सहन करने की सामना करने की सारी शक्ति है अनुभवी अर्थात चेहरे पर झलक फलक काकाजी पिताजी अनुभवी ये सारी परिभाषाएं अलग अलग मुरलियों में अनुभवी की। और कल भी कहा था तुम कौन हो, ग्रैंड सायर, भीष्म पितामह, अनुभवी। ये सारी जो है ना सात चीजें यहां की, उनके आधार पर इनका एक चित्रण, उनके आधार पर भविष्य को देखना कि अगर ऐसा ही रहा तो वही परिणाम होगा जो यहां मिला। वही संकल्प रहे तो कैसा दुख मिला, अगर आगे भी रहे तो दुख मिलेगा। वही हिसाब किताब के समय दृष्टिकोण कैसा था वैसा ही यहां रहा, फिर दुख मिलेगा। यहां बीमारी आई थी, यहां फिर बीमारी आएगी, सब होगा। बीमारी में कैसी स्थिति रहेगी, क्या खुशी की टैबलेट अवेलेबल रहेगी, क्या इतना इंडेंट और स्टॉक ले रखा है, क्या इंजेक्शन उस समय ढूंढना तो नहीं पड़ेगा, इमरजेंसी में मिलेगा ही नहीं, पता ही नहीं रखा कहां था। लगाना तो है, लगाना आता भी है, पर रखा कहां है वो ही नहीं पता, और रखा था पर पता चला एक्सपायरी हो गई उसकी। तो बाबा ने कहा इंजेक्शन लगाओ बीमारी में, पर क्या करें एक्सपायरी हो गई, अभी लगा दिया तो वही इंजेक्शन दुख बन जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। ये है सेकंड। पहला बताया आत्मा के 5000 साल की जो जर्नी है, यात्रा है, उसको देखना ऊपर से, परम धाम से परम धाम तक, फ्रॉम द सोल वर्ल्ड टू द सोल वर्ल्ड, ये यात्रा है। घर से घर तक, फ्रॉम स्वीट होम टू स्वीट होम, ये यात्रा। एक दूसरा स्वयं, स्वयं में ये सारी बातें। तीसरा परमात्मा पार्ट को देखना, उसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में कैसा था वो, बाबा ने कहा है, ब्रह्मा ने प्रश्न पूछा है, मेला जो है वृद्धि को पा रहा है तो मिलन की विधि वैसी होगी या कुछ बदलाव होगा। लोन लिया हुआ शरीर है, लोन ली हुई चीज की कड़ी संभाल की जाती है, तो ये शरीर भी लोन लिया हुआ है तो विधि वैसी होगी या बदलेगी। पास्ट में विधि, परमात्मा का क्या पाठ था, वर्तमान उसका क्या पाठ चल रहा है और भविष्य में उसका क्या पाठ होगा, कैसा होगा, उसको भी साक्षी होकर देखना। जैसे भगवान आता है सभा में बैठता है, यहां पर सारी सभा को कैसे देखता है, साक्षी होकर। हम उसी सभा में बैठकर उसी को साक्षी होकर देखें, उस सभा में बैठकर उसको साक्षी होकर देने का। जब भी बाबा आते हैं तो यह अभ्यास हमेशा करना है कि कैसे वो मिलता है, क्या वो सोचता होगा, क्या वो फीलिंग्स ऑफ गॉड, थॉट्स ऑफ गॉड, इमोशंस ऑफ गॉड, प्लान्स ऑफ गॉड, वर्ड्स ऑफ गॉड, क्या शब्द है, क्या बोल है, क्या संकल्प है, क्या प्लानिंग है, करता क्या है वो, उसकी भावनाएं कैसी है, उसी को साक्षी होकर देखना। तो साक्षी भाव किसमें, निरीक्षण किसका करना है, परमात्मा के पार्ट का, पास्ट में कैसा था, अब कैसा है और भविष्य में कैसा होगा। ये तीसरा। चौथा यज्ञ। यज्ञ में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में यज्ञ क्या था, प्रेजेंट में यज्ञ क्या है, फ्यूचर में यज्ञ कैसा होगा। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 1G, 2G, 3G, 4G क्या चल रहा है, 4G चल रहा है क्या, 5G भी है कोई, अभी तो 4G चल रहा है। फर्स्ट जनरेशन 1936-37 से लेकर तो 1950 तक सिंध हैदराबाद या कराची। सेकंड जनरेशन 50 से लेकर तो 69 तक साकार की पालना वाले या सेवा का पाठ। थर्ड जनरेशन 69 से लेकर तो 2007 तक दादी प्रकाशमणि, और 4G 2007 के बाद जो अभी चल रहा है। तो इन संपूर्ण यज्ञ ने कैसी कैसी करवटें बदली, क्या क्या हुआ यज्ञ में, और यज्ञ पहले कैसा था, पहले समर्पण का क्या अर्थ था, अभी समर्पण का क्या अर्थ है, पहले धारणाएं कौन सी थी, अभी धारणाएं कौन सी है, पहले प्राथमिकता क्या थी, अभी प्रायोरिटी क्या है, पहले किसे श्रेष्ठ महान समझा जाता है और अभी किसको महान श्रेष्ठ समझा जाता है, पहले योगी तपस्या पहले योग तपस्या क्या थी, अब योग तपस्या क्या है, पहले यज्ञ के बिल्डिंग मकान कैसे थे और अभी यज्ञ के बिल्डिंग मकान कैसे है, पहले यज्ञ के बिल्डिंग मकान की तरफ कैसा दृष्टिकोण था और अभी कैसा है, ये तुम्हारी कंबाइंड प्रॉपर्टी है। तो यज्ञ को भी कैसे देखना है, साक्षी होकर देखना है इस यज्ञ में क्या क्या हो रहा है, यज्ञ में क्या क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और क्या क्या होगा, यज्ञ की सारी बातों को, इमारतों को, उसी हिस्ट्री हॉल को देखो कि यही वो स्थान है जहां पर साकार मुरलियां चलती थी, यही वो स्थान है फिर बाद में हिस्ट्री हॉल में अपना मेडिटेशन हॉल में चलती थी, फिर ओम शांति भवन में चलती थी, अभी डायमंड हॉल में चल रही है। सब कुछ साक्षी होकर देखना, यज्ञ और यज्ञ से संबंधित जो भी है सब कुछ निरीक्षण करना, साक्षी होकर देखना। अगला, वर्ल्ड, सारे जगत को साक्षी होकर देखना, वर्ल्ड एज अ ड्रामा, ये सारा संसार क्या है, एक ड्रामा है, एक स्टेज है, इस सारे के सारे जगत को साक्षी होकर देखना है कि क्या दिखाई दे रहा है यहां पर, संपूर्ण जगत को, यह सबसे अच्छा अभ्यास है, बैठना और देखना संसार में क्या क्या हो रहा है, संसार में क्या क्या हुआ, क्या था पहले और अब क्या हुआ, कैसे पतन हुआ संसार का और कितना तेज गति से संसार का पतन हो रहा है, संपूर्ण इन सभी चीजों को साक्षी, संसार में जो कुछ हुआ, इतिहास, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ बैठकर देखना। तो वर्ल्ड, नेक्स्ट क्या बताया, प्रकृति को साक्षी होकर देखना, प्रकृति ने कैसा रूप बदला, सतयुग की प्रकृति को याद करो, त्रेता की प्रकृति को याद करो, कैसा सब कुछ सत्वप्रधान था, कैसा सब कुछ स्वच्छ था और अब क्या हो गया है, गाड़ी वाला आया क्या, अपना कचरा निकाल, अभी ये गीत बजता है सुबह सुबह सतयुग में ऐसे कोई गीत बजने की आवश्यकता नहीं थी, अभी तो भगवान ही गाड़ी लेकर आया है कचरा निकाल, स्वयं भगवान ही ये गीत गा रहा है दूसरे अर्थों में, गाड़ी वाला आया भाई कचरा निकाल, अपने मन का कचरा निकाल बाहर। तो संपूर्ण प्रकृति को देखना, प्रकृति ने कैसा रूप बदला है, क्या क्या अत्याचार हमने प्रकृति के साथ किए हैं, इसके लिए प्रकृति ने भी बदला लिया, कैसे लिया, तुम प्रकृति के विरुद्ध गए तो क्या क्या किया उसने, क्रुद्ध हो गई है वो, पहले तो प्राकृतिक आपदा है, दूसरा सारी बीमारियां, तुम्हारा सारा खान पान प्रकृति के विरुद्ध चला गया, तुमने दूषित कर दिया प्रकृति को, क्या क्या किया, देवताओं ने जो कभी नहीं किया था वो तुमने किया है द्वापर से, इसलिए प्रकृति भी नाराज है, इसलिए जो बीमारियां अभी हो रही, मेडिकल साइंस इतना तेज एडवांस कर रहा है पर बीमारियां तो बढ़ी रही है, कितनी बीमारियां जिसके लिए कोई इलाज ही नहीं है। तो प्रकृति को साक्षी होकर देखना छठवा, और सातवा, समय, काल, टाइम, समय, समय क्या है, समय कैसा है, समय के क्या क्या डायमेंशंस है, द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ साइंस, टाइम, उस टाइम में बहुत सारी चीजें आ जाएगी, उसमें विज्ञान आ जाएगा, सब 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 समय अनुसार क्या क्या हुआ, उस समय को ही साक्षी होकर देख लेना, समय कैसे परिवर्तन हुआ, या समय परिवर्तन नहीं हुआ, हम परिवर्तन हुए, वो तो अपरिवर्तनशील है, वो तो साक्षी है, समय सबसे बड़ा साक्षी है, कुछ नहीं करता है वो, देखता है सबको, उस समय ने सब देखा है, समय की गोद में ही सारा खेल हो रहा है, इसलिए समय को भी साक्षी होकर देखना। तो यहाँ अर्जुन क्या कह रहा है कि मेरे रथ को बीच में ले चलो ताकि मैं देख सकूं, सेन योरु भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत हे अच्युत। हे कभी न हारने वाले, कभी जिसकी पराजय न हो, ऐसा अच्युतम केशवम वो कह रहा है कि मेरे रथ को बीच में खड़ा कर दो, अपने जीवन रूपी रथ को, जिसका रथ का और मनोरथ का दोनों का सारथी स्वयं भगवान है, बीच में खड़ा करो और क्या करो, साक्षी होकर देखो। किस किस को साक्षी होकर देखो? आत्मा के 84 जन्म को, आत्मा के 5000 साल के पाठ को, आत्मा की यात्रा परमधाम से परमधाम तक, दूसरा इस वर्तमान जीवन को, तीसरा परमात्मा को, चौथा इस यज्ञ को, पांचवा प्रकृति को, छठवा ड्रामा दुनिया को, संपूर्ण विश्व को साक्षी होकर देखना, और लास्ट समय को साक्षी होकर देखना। महत्वपूर्ण स्वयं को साक्षी होकर देखने में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में जीवन की सारी घटनाएं, दूसरा पास्ट में जो भी संकल्प थे, जो भी बोल थे, जो भी कर्म थे, जो भी संबंध संपर्क थे, जो भी हिसाब किताब थे, और जो भी विकार तब थे, और वो ही सारे अब साक्षी होकर देखना। अभी संबंध संपर्क कैसे, क्या कड़वाहट है जो हमसे मिलता है, क्या दुखी होके जाता है या सुखी होके जाता है, क्या कहता है, तुम्हारे वजह से जीवन नर्क बन गया या तुम्हारे वजह से जीवन स्वर्ग बन गया, कहता है कि तू, कोई सामने सामने तो नहीं कहता कि तुम्हारी वजह से मैं डिस्टर्ब हूं, सीधा ही कहता है, कोई कहते भी ऐसे, जब से तुम आए सारा डिस्टर्बेंस चालू हो गया, तुम नहीं थे तो बहुत अच्छे थे। ये है वर्तमान, इसको भी साक्षी होकर देखो कि अगर इससे बाहर निकलना है तो, क्योंकि जब हम बहुत इन्वॉल्व होते हैं साक्षी भाव खो जाता है, और ये अभ्यास निरीक्षण का साक्षी का ऐसा है कि ये करने के बाद हम उससे डिटैच हो जाते हैं, और डिटैचमेंट में ही हमको हल प्राप्त होता है। अगर इन सातों चीजों में कुछ गड़बड़ है, हमारा दृष्टिकोण हिसाब किताब में गलत है, विकारों के प्रति इतना लड़ाई कर रहे हैं, काम से इतना लड़ाई कर रहे हैं, छूट नहीं रहा है, क्योंकि उसमें उसके अंदर ही घुस में उसके अंदर उसके वर्तुल के अंदर ही लड़ाई हो रही है, यहीं पर जो भी कर रहे हैं इसके अंदर चल रहा है, इससे पहले बाहर निकलना पड़ेगा। यहां बैठकर उसको देखो तो फिर पता चलेगा इसको कैसे जीते, साक्षी भाव। और एक लास्ट बात यहां कहनी है, चेतना की तीन अवस्थाओं का वर्णन यहां है। एक है विचारहीनता, दूसरा है विचार, तीसरा है निर्विचार। सबसे लोएस्ट लेवल जो है वो जिसमें युद्ध हो सकता है वो है विचारहीनता, जिसमें भीम और दुर्योधन खड़े हैं, विचारहीन है, उनको बस युद्ध करना है, इस अवस्था में युद्ध किया जा सकता है। शक्तिशाली है परंतु इतने बुद्धिमान बुद्धि नहीं है उनमें, एक तरफ भीम है एक तरफ दुर्योधन है, ये सबसे नीचे की विचारहीनता, विचार ही नहीं है यहाँ पर, उनको तो खबर ही नहीं है, उनको तो बस अपना प्रतिशोध है, अपना करना है, उसका अपमान हुआ और उसको उसके छाती का लहू पीना है, और वो जो भी है उसे अपनी प्रतिज्ञा है, जंगा तोड़नी है, छातू का लहू पीना है, बस ये प्रतिज्ञा में बद्ध है, ये इधर है और उसको उसका अपमान हुआ है, उसका बदला लेना है, ये दोनों का बहुत ही लोएस्ट लेवल है। अर्जुन थोड़ा सा बुद्धिमान है, ऊपर है, वो विचार के तल पर है, ये चेतना की थोड़ी ऊपर की अवस्था है, यहाँ वो सोच रहा है करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करूँ क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, प्रोस कॉन्स क्या क्या है, मेरिट्स डिमेरिट्स क्या क्या है, देखने तो दो मुझे, बाद में सोचेंगे, अगर युद्ध ना हो उसी में भलाई है तो शायद वही करूं, ये विचार की अवस्था है। एक तीसरी अवस्था है कृष्ण की, निर्विचार, वो चेतना की सर्वोच्च अवस्था है, सबसे बड़ी अवस्था, सर्व संपूर्ण, पहली जो लोएस्ट लेवल है और हाईएस्ट लेवल है, इसमें युद्ध हो सकता है, बीच में नहीं होता है, वो गड़बड़ वाली अवस्था है। जो निर्विचार अवस्था है वो विचारहीनता नहीं है, विचारों से पार चला गया है, साक्षी का भाव है वहां पर, कर्म है परंतु फिर भी साक्षी भाव है, वो ट्रांसेंडेंटल स्टेज है, परे ट्रांसेंड कर गई है आत्मा, ये सब विचार के भी ऊपर चली गई है। तो ये चेतना की तीन अवस्थाएं हैं यहां पर। तो वो अर्जुन अभी बीच की अवस्था में सोच रहा है करूं नहीं करूं, द्वंद्व है मन में, संघर्ष है मन में, इसके लिए उसने क्या किया, हाँ मेरे रथ को बीच में ले जाकर खड़ा करो ताकि मैं क्या करूं, देखूं शत्रुओं को देखूं। तो ये भी एक बात यहां पर है। तो ये आज तीन श्लोकों की हमने चर्चा की, अभी पहला अध्याय चालू है। धीरे धीरे मुख्य गीता तो अभी चालू ही नहीं हुई है, अभी तो अर्जुन का विषाद ही चालू है और 40 या 44 तक और श्लोक है, वहां तक तो अर्जुन का विषाद ही है। अभी अर्जुन आगे जाके तर्क देगा क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, वो बता रहा है और दुखी होकर गिरता है। फिर बाद में गीता चालू होगी, अभी ये बैकग्राउंड चल रहा है गीता का, भूमिका बन रही है, तैयार हो रही है भूमिका, पार्श्वभूमि है ये, अभी गीता तो चालू ही नहीं हुई है। अच्छा, ओम शांति।